अनुरोध करूंगी डॉक्टर पूनम शर्मा बहन से कि वे मंच पर आएं। पूनम शर्मा बहन, सब करतल ध्वनि से हमारे गेस्ट का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। ब्रह्मा कुमार जिग्नेश भाई, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमार वीनू भाई, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ मंच पर आए। ब्रह्मा कुमार हमारे महेंद्र भाई, आपसे भी अनुरोध है मंच पर आए। और एक बार सभी के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन और स्वागत। आज का ये पैनल डिस्कशन शुरू करने से पहले 3 मिनट हम सब परमात्मा स्मृति में बैठेंगे, उसके बाद आज का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। सभी को ओम शांति और हमारे अतिथियों को भी ओम शांति। पैनल डिस्कशन में आप सभी का पुनः स्वागत है। मोटे अनाज से स्वस्थ खेती की ओर, प्रायः आजकल हम ये मिलेट्स जो प्रचलन में आया है, जिससे हम सभी पहले अनभिज्ञ थे, मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, और अभी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, ऐसा हमने भी अभी जाना। कल तक जिसकी ओर ध्यान भी नहीं जाता था, आज हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जागृति आई है और इसका स्वास्थ्य पर भी लाभ है। तो सर्वप्रथम मैं महेंद्र भाई से अनुरोध करूंगी कि क्या है इसकी प्रस्तावना, क्या है प्रारंभ, वो बताने से पूर्व मैं चाहती हूं कि महेंद्र भाई अपना भी संक्षिप्त परिचय दें। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम माया नगरी कहते हैं, वहां जॉब करते हुए प्रकृति की ओर आकर्षण किस तरह हुआ और वो किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अपना संक्षिप्त परिचय देंगे महेंद्र भाई जी। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है अतिथि देवो भव, तो मैं अनुरोध करूंगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि पुष्प गुच्छ से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। मैं पुनः आऊंगी महेंद्र भाई की ओर। महेंद्र भाई, क्या है इस मोटे अनाज का इतिहास और क्यों सरकार इसे इतना महत्व दे रही है, जिसे हम मिलेट्स सुपर फूड और श्री अन्न भी कहते हैं। ये जानने से पूर्व मैं पुनः यही कहूंगी कि आप अपना पहले संक्षिप्त परिचय दें और फिर हम इतिहास की ओर जाएं इस मोटे अन्न की।
ओम शांति। आवाज तो हॉल में भी नहीं गूंजी तो बाहर जाएगी कैसे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्यार से कहेंगे ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो पीछे बैठे हैं, अनुरोध है आगे आ जाएंगे, क्योंकि जीवन में भी हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए सब आगे आ जाएंगे।
आज इस मंच पर परमपिता परमात्मा की प्लानिंग कहो या आप सबके और हमारे सौभाग्य कि ऐसा मौका हमें मिला है कि जहां आते से ही ये हम एक परिवार की फीलिंग कर रहे हैं। जैसे दीदी ने कहा मेरा परिचय, तो मेरा लौकिक नाम महेंद्र ठाकुर है और मैं बाय प्रोफेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। और पढ़ाई करते करते हर किसी की जैसी इच्छा होती है कि अच्छी पढ़ाई करे और फिर अच्छी सी नौकरी करे, तो उसी के तहत हमने पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके मुंबई में अलग अलग कंपनियों में काम किया। और काम करते करते ये देखा गया कि निकले तो गांव से थे और जब गांव में इतना समय बिताया तब गांव में क्या चीज है या क्या महत्व है ये पता नहीं था। तब अट्रैक्शन होता है बड़े शहरों का, तो वैसा ही अट्रैक्शन हमें था। मुंबई में 3 साल नौकरी करने के बाद चाहे वो मल्टीनेशनल्स हो या और कोई कंपनी हो, उसमें काम करने के बाद पता चला कि असली लाइफ है, जीवन जो है वो तो गांव में है। और दूसरा ये देखा हमने, महसूस किया कि चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसका बेस तो गांव है और उसका रॉ मटेरियल भी गांव में ही तैयार होता है। तो 1997 में मुंबई की नौकरी छोड़कर फिर हम गांव की ओर चल पड़े और वहां से फिर हमारे इस कृषि कहो या खेती कहो उसकी शुरुआत हुई। और अभी हम खुद खेती करते हैं, जिसमें बहुत सारे खेती को लगने वाले इनपुट्स है, वो ऑर्गेनिक तरीके से जैविक पद्धति से कैसे तैयार करें वो भी करते हैं और किसानों के ट्रेनिंग भी देते हैं। तो जब ये पता चला कि ये एक माध्यम ऐसा है कि जहां खेती में हमारे भावनाओं की और हमारे विचारों का बहुत बड़ा महत्व है, तो आज से 12 साल पूर्व जब हमने ये सुना कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कृषि और ग्राम विकास प्रभाग है उसमें इस तरह के काम होते हैं, तब से हमने पिछले 12 साल से हमारे खेतों पर हम शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग तो पहले किए, अभी उसका उत्पादन हम ले रहे हैं। तो ये हमारा संक्षिप्त परिचय है।
पुनः आऊंगी, मिलेट्स मोटा अनाज क्या है, इसका इतिहास और क्यों सरकार इसे इतना महत्व दे रही है?
जी, जैसा एक नाम है तो पहली बात तो नाम से इसको मोटा अनाज क्यों कहा जाता है, क्या वाकई में ये साइज में मोटा है? तो ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि जो हम लिस्ट देखेंगे उसमें ये अनाज को ऐसे साइज में मोटा नहीं है, लेकिन गुणों में जरूर मोटा है। और इसीलिए ये एक उसे विशेषतावाचक नाम हम मोटा अनाज कह सकते हैं। और इसका अगर हम ये देखें कि ये जितने भी मोटे अनाज है या मिलेट्स है, ये हालांकि नए जनरेशन के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी कृषि पद्धति में नए तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो पहले पुरातन काल में इसका बहुत बड़े पैमाने में उत्पादन लिया जाता था, आज भी लिया जा रहा है, लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये अनाज जो हमारी पद्धति चेंज हुई, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ, तो चेंज होने से आप सभी इस बात को मानेंगे कि अब वो मोनोटाइप क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, मतलब एक जैसा क्रॉप। तो उसमें अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो गेहूं और चावल ये हमारे खाद्यान्न में आता है, लेकिन इसके अलावा भी ये जितने भी ये मिलेट्स है ये आज भी उस जगह पर उगाए जाते हैं जहां अभी तक टेक्नोलॉजी डिसिमिनेट नहीं हुई है या टेक्नोलॉजी जहां तक नहीं पहुंची है। तो हम मोटे तौर पे उसको कहते हैं कि वो आदिवासी क्षेत्र है या पिछड़ा इलाका है या जहां कोई साधन नहीं है, इरिगेशन का साधन नहीं है, वहां उनके गांव में जहां दुकानें नहीं है रासायनिक खाद की या रासायनिक पेस्टिसाइड की, तो ऐसे जगह पर आज भी मिलेट्स का उत्पादन होता है। तो ये मिलेट्स जो है ये इसको और भी अलग अलग नाम है, जैसा दूसरा नाम इसका दिया गया श्री अन्न के नाम से भी इसको जानते हैं। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उसमें मिलती है। अब ये श्री अन्न, इसको श्री क्यों नाम दिया गया है? तो श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये अनाज अपने आप में श्रेष्ठ है और हमारी परंपरा है कि जो श्रेष्ठ होता है उसको हम श्री की उपाधि देते हैं। तो वैसे ही हमने ये कई मायनों में श्रेष्ठ होने की वजह से इसको हम श्री अन्न कहते हैं। और ये उगाने में आसान है, इसकी गुणवत्ता कैसी वो भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से ये समूह एक है, जो समूह अपने आप में हमारे जीवन में पौष्टिकता से भरपूर है और हमारे शरीर को लगने वाली सारी चीजें जो है, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, वो भरपूर मात्रा में है, इसलिए इसको श्री अन्न भी कहा जाता है। कुछ जगह पे इसको सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है और इससे आप भली भांति परिचित हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इसके प्रकार, तो इसमें अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग नाम हैं। हिंदी में अलग है, तेलुगु में अलग होगा, मराठी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हमारे भारत देश में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। अब ये मिलेट्स का उत्पादन कई जगह पे रीजनल, जो जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन और वहां का कल्चर, इस हिसाब से अलग अलग होता है। तो कुछ मिलेट्स हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश का इंटीरियर पार्ट है, वहां है। कुछ दूसरे जगह जो आदिवासी बेल्ट है वहां देखेंगे तो वो ज्वार है, बाजरी है, रागी है, कंगनी है, सावा है, कोदो है, कुटकी है। ये हमारे नाम प्रचलन के नाम है, जिसके इंग्लिश के नाम हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत में करीब करीब सारे मिलेट्स का उत्पादन अलग अलग राज्य में लिया जाता है, और यही हमारा, ये कह सकते हैं कि किसी देश में नहीं लेकिन सिर्फ भारत देश में सारे प्रकार के मिलेट्स हमें उगाने को, मतलब दिखाई देते हैं और हम उगा सकते हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। मुझे एक चीज समझ में आई, कहलाने वाला ये मोटा अन्न मोटापा भी दूर करता है, तो गुणों में मोटा है इसीलिए इसे मोटा अन्न, श्री अन्न, सुपर फूड। चेंज की गई भाषा लेकिन गुण वही है। तो जैसे परमात्मा भी कहते हैं आदि सो अंत, तो पुनः हम उसी अन्न की ओर जा रहे हैं। तो कुछ कारण और परिणाम, विज्ञान हमें ये सिखाता है। तो मैं अब वैज्ञानिक रीति से इसके क्या प्रमाण हैं, मैं पूनम बहन से अनुरोध करूंगी कि वे पहले अपना संक्षिप्त परिचय दें और तत्पश्चात इस मोटे अन्न का वैज्ञानिक रीति से क्या प्रमाण है, क्या लाभ है, उनसे अवगत कराएंगी पूनम बहन।
ओम शांति। अभी हम बड़े अच्छे टॉपिक पे एकत्रित हुए हैं श्री अन्न को डिस्कस करने के लिए। और अभी दीदी ने जैसे कहा कि ये मोटा अनाज मोटापे को भी कम करता है, तो मैं उसी बात से शुरू करती हूँ कि बिल्कुल सही है दीदी, ये मोटापे को कम करता है। तो इसमें जो रेशा है वो बहुत ज़्यादा है, 10% रेशा इसमें ज़्यादा है अगर हम इसको कंपेयर करें वीट और राइस के साथ। वीट में जो रेशा है वो 1.2 ग्राम्स है, और जबकि चावल में ये 0.2 ग्राम है पर 100 सर्विंग के हिसाब से। और इसके रेशे की एक और बहुत खासियत ये है कि ये प्रीबायोटिक एक्ट करता है। अब ये प्रीबायोटिक शब्द से आप, मुझे लगता है सभी परिचित होंगे। एक शब्द होता है प्रोबायोटिक, तो प्रोबायोटिक आजकल बहुत प्रचलित है, जिसमें कि हम जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, उनमें से जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन के अंदर ये हमेशा रहते हैं और ये दही के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह के जीवाणुओं को, उनकी वृद्धि के लिए, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए ये एक भोजन प्रदान करता है। तो ये प्रीबायोटिक इसलिए इसको बोलते हैं, उनके लिए ये एक भोजन के रूप में मिलता है, और इसलिए ये मोटापे को। और दूसरा एक मोटा दूसरा कारण ये है इस मोटे अन्न का कि इसका जो पाचन है पेट से लेके हमारी आंतों तक बहुत धीमा रहता है। जैसे दूसरे अन्न है वो जल्दी पचते हैं, तो धीमा रहने के कारण ये जो ज्यादा समय रहता है हमारे पेट के अंदर, तो हमारे पेट में एक फुलनेस रहती है, पेट भरा भरा रहता है, जिससे भूख कम लगती है और मोटापा भी कम होता है। तो ये इसका एक मोटा कारण है।
दीदी मैं चाहूंगी,
मैंने अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड होगी कि श्री अन्न पे बात करने जा रहे हैं। तो मेरा जो लौकिक नाम है वो पूनम शर्मा है। मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से हूँ, और मैं वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट कम इंचार्ज पल्सिस इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में कार्यरत हूँ इस वक्त। और मैं 35 साल से AICRP का प्रोजेक्ट पल्सिस पे काम कर रही हूँ, और उसमें मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ चिकपी माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम के लिए 2012 से। और मेरा सारी दलहन की जो फसलें हैं उसके ऊपर माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से हम काम करते हैं, और उसके साथ साथ जो पल्सिस की वैरायटीज हैं उनकी डेवलपमेंट में मेरे साथ ब्रीडर्स की, एंटोमोलॉजिस्ट की, पैथोलॉजिस्ट की, बायोकेमिस्ट और ऐसी पूरी टीम है। और बेसिकली मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, पर मैं कार्यरत प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के अंदर हूँ। और मेरा और जो अपना मेन काम है वो है बायो फर्टिलाइजर की डेवलपमेंट, और इसमें ऐसे मैंने 6 बायो फर्टिलाइजर जो है वो डेवलप करे हैं और जो कि किसानों तक गए हैं, और ऐसे ही बायो फर्टिलाइजर जो है वो हमने अपने ICRP प्रोजेक्ट में नेशनल लेवल पे भी डेवलप करे हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा परिचय है।
बहुत बहुत शुक्रिया पूनम बहन का। मैं अब आती हूँ, महत्व भी सुना, वैज्ञानिक प्रमाण भी सुने, पर क्या सामान्य जीवन में हम इसका सेवन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो मैं विनू भाई से अनुरोध करूंगी कि क्या मोटे अन्न को हम सेवन कर सकते हैं? पहले अपना संक्षिप्त परिचय दें, तत्पश्चात इस पर प्रकाश डालें।
ओम शांति। मैं अपना परिचय दूं उसके पहले महेंद्र भाई को अभिनंदन करना चाहता हूं, इसलिए कि वर्तमान समय में ऐसे बहुत कम उदाहरण पाए जाते हैं जो शहरों से गांव की ओर जाएं। यहां हम बैठे हैं इंक्लूडिंग माइसेल्फ, मैं भी गांव से शहर की ओर ही गया और वहां सेटल हुआ हूं, लेकिन ऐसे युवा जो शहरों की चकाचौंध को छोड़कर, और हमने पाया, आपसे सुना कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट एजा और मल्टीनेशनल कंपनी में आप अच्छे से जॉब करते थे, फिर भी ऐसे युवा अगर गांव की ओर लौटते हैं तो एक अच्छी साइन है। तो महेंद्र भाई का बहुत बहुत अभिनंदन है, और अभी इसकी जरूरत भी है, क्योंकि खेती खेती की चर्चा करते रहेंगे लेकिन गांव में कोई रहेंगे ही नहीं तो कौन करेगा। मैं ब्रह्मा कुमार विनू भाई, ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से 1974 में जब मेरी उम्र 12 साल की थी मैं इस विद्यालय में ज्वाइंट हुआ और तब से जुड़ा हुआ हूं। मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग तक अभ्यास किया और फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट इंजीनियर जॉब किया पिछले 3 साल। हाँ, 3 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब से निवृत्त हूं। ग्राम विकास विंग जो है हमारी ब्रह्मा कुमारीज की, वो जब से शुरू हुई तब से मैं उसका मेंबर रहा हूं, और ग्राम विकास की सेवाओं करने के लिए बाबा ने और बड़ों ने हमें निमित्त बनाया है। जहां तक मोटे अनाज का सवाल है, जैसे राखी बहन ने बताया, हम सब अभी जानने लगे हैं मोटा अनाज क्या है, और यूनाइटेड नेशंस को भी इसका इम्पोर्टेंस पता चला, ताकि इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। मैं जब छोटा था, बच्चे थे हम, और मैं ये बात कर रहा हूं 80 के दशक के पहले की, 80 से पहले की, हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी अच्छे पवित्र दिन आते हैं उपवास करते हैं, तो हमने देखा हमारे फादर और हमारे परिवार के बड़े उपवास करते थे, तो उपवास के दिनों में ये मिलेट्स, जिसको हमारे वहां जो प्रचलित था वो मोरैयो और सामा और कोदरी, राजग्रह को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं तो वो उसका खास बनाकर, उसके जो व्यंजन बनाकर उपवास के दिनों में खाते थे। तो हम जानते कि उपवास तो पवित्र चीज होती है, तो पवित्र जो उपवास करते हैं भगवान की नजदीक जाने का एक उसमें लक्ष्य रहता है, ऐसे समय पर जो अन्न स्वीकार्य किया जाता है तो वास्तव में ही वो श्रीअन्न हो सकता है, लेकिन वो उपवास के दिनों ही रहा। फिर धीरे धीरे जैसे हम सब अभी अनुभवी हैं, अभी वो बात भी चली गई है, उपवास भी चले गए और वो श्री अन्न भी चला गया। मैंने पिछले 3 साल से जनवरी 2021 जब नेचुरोपैथी सेंटर के संपर्क में आया मैं, और वहां जब मैं गया तब मुझे ये मिलेट्स का डिटेल और उसका इम्पोर्टेंस वहां पता चला, और वहां के जो नेचुरोपैथी सेंटर्स के डॉक्टर्स और फैकल्टी थे उन्होंने बताया, तब पता चला कि मिलेट्स तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बताया ना कोडो, सानवा, फिर राजगरा, मुरैयो, फिर कहते हैं श्यामा, आपके वहां क्या वो बंटी, हमारे साउथ गुजरात में होता है नागली, रागी जिसको कहते हैं, तो ऐसे कई ऐसे अच्छे अच्छे नाम हैं ऐसे, तो वो समय पता चला। और जैसे बताया अभी गूगल में सर्च करेंगे तो अभी तो बहुत कुछ है, अभी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अब इम्प्लीमेंट जो करना है, तो मैंने इसका इम्प्लीमेंट आज से जनवरी 21 में 4 मास के लिए कंटिन्यूअस 100% फॉलो करके रिजल्ट पाया मैंने कि वेट लॉस, जिसके मोटा ना जैसे आपने बताया वो मोटापा भी घटाता है, तो जितना जरूरी है आपकी शरीर की प्रकृति के अनुसार आपका वेट मेंटेन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव से पाया। और दूसरा कई बार होता है कि ये चीज है उसमें तो यही बनता है और क्या क्या बन सकता है, लेकिन मैंने ये पिछले 2 साल में ये जो मिलेट्स हैं उसके कई सारे व्यंजन बनाते हुए भी देखा है और खाया भी है। अभी तक तो हम ऐसे ही समझते कि उसकी सिर्फ खिचड़ी ही बन सकती है या रोटी ही बन सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि इसके हम खिचड़ी, पुलाव, उपमा, इडली, डोसा, पूरा, हांडवा, ढोकला, मुठिया, इवन स्वीट्स भी बना सकते हैं, उसका हलवा भी हमने खाया। और राब जो होता है, जो बीमार होते हैं और जो नहीं खा सकते सॉलिड बेस, तो उसकी राब भी बहुत अच्छी बनती है, जो बीमारों के लिए वो पोषक युक्त रहती है और इजीली खा सकते हैं, राब भी बनती है, इवन इसके बिस्किट भी बनते हैं, कुकीज, तो ये सब व्यंजन उसके बनते हैं। इसलिए कहने का भाव हमारा ये है कि ऐसा मत समझे या गलत फहमी में रहे कि मिलेट्स तो एक रूखा सूखा भोजन होगा, लेकिन नहीं, मिलेट्स में ये सभी व्यंजन हम जो गेहूं और चावल से बना सकते हैं वो सभी व्यंजन मिलेट्स के भी हम बना सकते हैं, तो ये मेरा अनुभव रहा है। और न सिर्फ मेरा अनुभव, मैंने आंखों देखा ऐसे आज तक 50 व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने ये फॉलो किया है, उन्हों का पेट अंदर है, स्फूर्तीले हैं और स्पिरिचुअली भी वो बहुत एडवांटेज देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया वेणू भाई। वेणू भाई एक प्रश्न मैं करूंगी, आपने बोला कि मिलेट्स के सब बनते हैं, पुलाव, इडली, डोसा, आपने सेवन भी किया है, तो एक जो सबके अंदर प्रश्न होगा वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसका स्वाद कैसा था।
बहुत अच्छा प्रश्न है, स्वाद कैसा था। जैसे चावल का उपमा का स्वाद होता है ठीक वैसा ही था, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो शायद ऐसा लगेगा, क्योंकि हर चीज जो नई होती है तो वो रुचिकर इंस्टेंट नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि कितने लंबे समय से उसका सेवन बंद हो गया था, लेकिन मैंने पाया कि मैंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसको स्वीकार किया फिर तो ऐसा लगता था कि यही चाहिए और यही हमारा वास्तविक भोजन है। दूसरा इसके साथ स्वाद के साथ मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी भोजन हो हमारे सामने प्लेट भोजन की, उस प्लेट से हमें पहले पहले क्या चाहिए, भोजन से क्या चाहिए हमें, क्या क्या चाहिए, चलो क्या चाहिए नहीं, क्या क्या चाहिए, दूसरे शब्दों में कहें तो भोजन कैसा होना चाहिए,
पोषण युक्त,
फर्स्ट वो पोषण युक्त होना चाहिए, सेकंड विस्मुक्त होना चाहिए, यस, पॉजिटिविटी से भरा हुआ, जिसको सात्विक कहेंगे, सात्विक होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए, तो ये सब मिला के और डाइजेस्टिव, हाँ है, हाँ अच्छा दिखना भी चाहिए, ओके, हाँ इसमें प्रायोरिटी क्या रखेंगे, ये सब एक में ही तो नहीं होगा सब में, और एक ही गुण वो परसेंटेज में नहीं होगा, हर एक में अलग अलग होगा, तो प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, न्यूट्रिशन प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी टेस्ट, ओके, एक तो केमिकल युक्त मुक्त तो होना ही चाहिए, ये तो सब स्वीकार करते हैं, वो होना ही चाहिए, और यहां हम जब चर्चा करते हैं ऑर्गेनिक की और शाश्वत यौगिक खेती थी, तो इसमें हमारा एस्पेक्ट यही है कि विष मुक्त होना चाहिए, वो तो सब है, लेकिन ये सब जो बातें आई उसमें से तीन शब्द निकल के आ रहे हैं कि हमारा भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए, ये सब बातों को मिला के ये तीन कैटेगरी हम कह सकते, अब ये तीन में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सात्विक, पौष्टिक और स्वादिष्ट, पौष्टिक, सात्विक नहीं हुई तो चलेगा, ओके समझ गए, जैसे कृषि के लिए हम कहते हैं कि उत्तम खेती, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, वैसे ये तीन प्रायोरिटी हैं, उसमें भी मैं अपना ओपिनियन देता हूं, किसी की प्रायोरिटी पौष्टिक हो सकती है, मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी भोजन सात्विक होना चाहिए, एंड सेकंड जो सात्विक है वो पौष्टिक होना चाहिए, और थर्ड जो सात्विक है पौष्टिक है वो स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वाद वो हमारी थर्ड प्रायोरिटी हो, अब वो साइकिल चेंज हो गया है, स्वाद फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड पौष्टिक है और थर्ड सात्विक है, एग्री आप, अब ये साइकिल को हमें चेंज करना है, सात्विकता फर्स्ट, इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये भोजन के लिए भी सेमिनार हो रहे हैं, अनाज के लिए भी, उसमें हमारा एस्पेक्ट है सात्विकता फर्स्ट, तो आपने स्वाद कैसा पूछा था, इसका जवाब शायद इसमें है कि अगर हमारी सात्विकता और पौष्टिकता के तरफ लगन है, हमारी रुचि है, हमारा इंटरेस्ट है, तो स्वाद मायने नहीं रखेगा, फिर भी हम मानव हैं, स्वाद होना चाहिए, मेरा अनुभव कहता है कि इसका हम यूज करते हैं, रिजल्ट मिलता है तो स्वाद भी आता है, अगर रिजल्ट पौष्टिकता और सात्विकता का नहीं मिलेगा तो स्वाद भी नहीं आएगा, लेकिन वो रिजल्ट मिल रहा है तो वो स्वाद भी, मन को भी वो रुचिकर होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनू भाई के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, ये रियल फैक्ट है, मैंने प्रायोरिटी जिसको दी है तो मुझसे उन चीजों से मुझे वो बेनिफिट मिलेगा ही, और क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति आजकल सब इतने ज्यादा जागरूक हो चुके हैं कि वो स्वाद को सेकेंडरी रखेंगे ही, ये करें कहें कि रखना पड़ेगा तो भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी, पर अभी हम जिस उद्देश्य से बैठे हैं ग्राम विकास का प्रोग्राम है, कृषि फील्ड से सब आए हुए हैं, तो बात कृषकों की भी मैं इस मोटे अन्न को लेकर करना चाहूंगी जिग्नेश भाई से। जिग्नेश भाई, आखिर ये उपलब्ध कहां से हो मोटा अन्न, और यदि कृषक इसे उगाता है तो क्या उसे कोई बेनिफिट है? क्योंकि यदि लाभ ही नहीं होगा तो घड़ी की सुई ज्यों की त्यों, किसान को कोई लाभ नहीं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं। तो जिग्नेश भाई, आपसे भी अनुरोध, पहले अपना परिचय दें, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दें।
धन्यवाद दीदी। ओम शांति। इस शरीर का परिचय पहले बताया, तो इस शरीर का नाम जिग्नेश है और अभी सेवार्थ इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स में एज अ ट्रेनर और वहां का पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव के सेवा वहां दे रहे हैं हम, और वहां सालाना भर 20,000 से भी ज्यादा कृषक आते हैं जो तालीम लेकर कुछ प्राप्त करके, कुछ नवीनतम चीज प्राप्त करके अपने जीवन में और अपनी खेती में कुछ नवीनतम करते रहते हैं, और उन किसानों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बात हुई, क्योंकि विषय ही मोटा अनाज जो स्वस्थ खेती की ओर, खेती भी स्वस्थ खेती की ओर है, अभी जब यहां बैठे तब मन में ये संकल्प, जब आपने महेंद्र भाई से प्रश्न पूछा था कि ये अनाज, ये मोटा अनाज मिलेट्स कब से आया, ये कैसे शुरुआत हुई, तो मुझे याद आया कि ये अनाज कोई अभी का तो है नहीं, बहुत पुराना है। और हम मित्रता के रूप में श्री कृष्ण और सुदामा की जब बात करते हैं, तब सुदामा अपने मित्र के लिए क्या लेकर आता है, और विदुर जी की भाजी के बारे में भी, विदुर जी के घर जब कृष्ण जी संवाद करने के लिए और पांडव और कौरव को समझाने के लिए उनके घर आते हैं और भोजन के लिए कुछ होता नहीं है घर में, तो क्या बनाते हैं? तो ये अनाज जो है वो 5,000 वर्ष पूर्व का है और ये ही श्रेष्ठ अन्न है, और इसीलिए इसे श्री अन्न कहा गया है। और ये श्रेष्ठ अन्न है क्योंकि ये आज से नहीं, आदिकाल से जिसे मान्यता मिली है। ऋग्वेद में भी बाजरे का बताया गया कि बाजरा आज से 5,000 वर्ष पूर्व का है, जिसका संशोधन देखा जाए या उसके बारे में जो चर्चा हो रही है। तो ये अन्न जो बहुत सालों से चल रहा है, और यही हमारा अन्न है जो श्री अन्न है। और इसकी खेती के बारे में जब बात करें तो हम सबके लिए बहुत खुशी का, और यह विषय के ऊपर हम जाए तो अगर भारत में कहते, पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है जिसका उत्पादन भारत करता है मोटे अनाज का। प्रथम स्थान पर अफ्रीका है और दूसरे स्थान, 130 देशों में इसका अन्न पैदावार होती है, और जिसमें 130 देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। ऐसे देखा जाए तो प्रथम स्थान पर ही होना चाहिए, मगर आज हमारी प्रायोरिटी हो गई गेहूं और चावल के ऊपर, और श्री अन्न धीरे धीरे हमारे नजरों से दूर हो गया। इसकी खेती जो किसान के पास पानी की व्यवस्था ना हो, जहां दिक्कत माना पानी की किल्लत हो, जहां पानी नदियों में ना हो या अकाल पड़े, उस जगह पर भी श्री अन्न पैदावार हो सकती है। इसीलिए ज्यादातर आदिवासी एरियाओं में इसका ज्यादा सोइंग हो रहा है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी वो भोजन हो गया, और वो भोजन उनके लिए श्रेष्ठ भोजन है, क्योंकि वहां बोरवेल ट्यूबवेल्स और जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, जबकि यह हर कोई किसान ज्यादातर जहां पर गर्मी मौसम हो वहां पर यह किसान इसका सोइंग कर सकता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर एक स्टेट में इसको सोइंग कर सकते हैं भारत में, तो सिवाय जम्मू में जब ठंड रहती वहां तब नहीं हो सकता। दूसरा, यह अन्न ऐसी जमीन जो जमीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत कम हो और यह अन्न के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की खाद की जरूरत नहीं है, तो हम जो प्राकृतिक खेती शाश्वत योगिक खेती में जिसकी बात करते हैं कि जहां बिना खाद का अन्न हो, शुद्ध और सात्विक अन्न हो, तो वो अन्न यही अन्न की है कि जिसको पैदावार में एक भी रुपए का खाद पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर इसका सोइंग टाइम तो सब जानते ही होंगे कि मई, जून और जुलाई में इसका सोइंग करते हैं, क्योंकि इसको पानी की जरूरत नहीं है। अगर जहां पानी की व्यवस्था हो तो एक पानी से ही पैदावार कर सकता है, एक बार पानी देने की बस। बाकी गेहूं में आप देखो कितनी बार पानी देना पड़ता है, हमारे साइंटिस्ट साहब ने बताया 5 से 7 बार कभी कभार देते हैं पानी, कितना पानी जाता है। दूसरा, हम उसके अंदर फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं वो लिंचिंग होकर हमारी सॉइल में जाता है, सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी खत्म हो रहा है। दूसरा, वो सॉइल में जाने के बाद नीचे जो हमारा भूजल में जाता है तो वो पानी आज उसका टेस्ट करते हैं तो उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा आती है, क्योंकि नदी नहर का पानी भी जो आता है उसमें नाइट्रेट का मात्रा आती है। तो यह अन्न सोइंग करने से क्या फायदा है, हमारी मिट्टी की उर्वरकता हम बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसकी सेहत बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि बिना खाद का, बिना पेस्टिसाइड का यह अन्न है। इसमें भी जो हाइब्रिड वैरायटी कुछ बाजरियों में आए हैं, बाकी क्रॉप में उसकी कोई संशोधन नहीं हुआ है, मगर फिर भी इसमें माइक्रो फर्टिलाइजर्स और खाद की जरूरत नहीं रहती। इसमें दो प्रकार से ज्यादातर हमारे यहां गुजरात में और राजस्थान में जो किसान सोइंग करते हैं वो क्यारी में क्यारी बनाकर उसे बीज को पहले खेत की जुताई करके फिर बीज को हल्का डालकर ऊपर लकड़ी से उसके ऊपर मिट्टी डाल देते, क्योंकि यह अन्न बहुत गहराई में नहीं देना है, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी होनी चाहिए और उसका सोइंग भी जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। मगर अभी अभी जो नए संशोधन के अनुसार आज जो 15x15 की क्यारी बनाकर सोइंग करते हैं, छोटा सा 15x15 की क्यारी बनाकर उसको सोइंग करके फिर उसको टिश्यू को रिप्लेस करके फिर से सोइंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि उसमें 2.5x2 या 2x1 का अंतर रखते हैं जिसमें खरपतवार को हम सहज रूप से निकाल सकते हैं। इसमें वीडिसाइड की कोई जरूरत नहीं है, मगर हाँ यह अन्न ऐसा है जो आपके लिए नवीनतम है, इसलिए आपको कुछ लगेगा जब खरपतवार को निकालेंगे तो आप कभी क्रॉप को भी डैमेज कर सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा गैप होगा और उसका सोइंग होगा तो यह सहज रूप से आप उसका पैदावार भी, ये बहुत शॉर्ट पीरियड में होने वाला क्रॉप है, जिससे आपको दूसरा क्रॉप लेना है इसके बाद वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये माना ढाई मंथ दो कुछ ऐसे क्रॉप है जिसमें 4 मंथ लगते हैं, बाकी तो इसके 3 महीने में आपको एक क्रॉप रेडी हो जाता है, तो समय मर्यादा छोटा पीरियड में पैदावार भी आप अच्छी ले सकते हो, अगर डिस्टेंस से सोइंग करेंगे तो पैदावार ले सकते हैं। जो दीदी ने बात कही कि यह अन्न की आज मार्केट में बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि दीदी आज जितनी भी माना जो नेचुरोपैथी में जाएंगे या आयुर्वेद डॉक्टर के पास, इवन मैंने अहमदाबाद के कैंसर स्पेशलिस्ट और राजकोट के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जिग्नेश मेवा और अहमदाबाद के जो थे उनका नाम मुझे मालूम पटेल साहब हैं, उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा कि जिग्नेश भाई डे बाय डे कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये हम इनकी ट्रीटमेंट करते हमें ये महसूस हुआ कि मोटा अनाज से हमारी इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट होती है, जिसके कारण मैं आज घर में या कहीं पर भी हमारे डॉक्टर की मीटिंग्स होती है घर से टिफिन लेकर जाता हूं और बाजरी का रोटी बनाकर घर से लेकर जाता हूं। तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है, जिसके कारण लोगों में अवेयरनेस जागरूक हो रही है और हम सबका भी ये कर्तव्य है, आज जितने भी कॉन्फ्रेंस में आए उन सबका ही कर्तव्य है कि मोटे अनाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस बढ़ाएं। आज उसकी वैल्यू करीबन 1 kg लेने जाएंगे तो 150 रुपया उसकी कॉस्ट है। और अभी महेंद्र भाई दिखा रहे थे कि उसका वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन करने के बाद जो पैकिंग होता है जिसके कारण उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, मगर ये मोटा अनाज बहुत ही हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा किसान इसके लिए प्रेरित तब होंगे जब उनको जो सोइंग कर रहे हैं उसका भाव मिले। किसान का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हमें भाव नहीं मिलता, हमें कीमत नहीं मिलती, हम जो पैदावार कर रहे हैं उसकी सही कीमत नहीं मिलती, मगर ये जागरूकता आने से इसकी कीमत मिलेगी। आज इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत है और जैसे जैसे गुजरात, पंजाब और बाकी स्टेटों में, महाराष्ट्र, तो बहुत स्टेटों में जो दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ रही, डायबिटीज, आप देखिए भारत सबसे प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, हाई ब्लड प्रेशर में, बीपी में भी बढ़ रहा है और कैंसर पेशेंट डे बाय डे इंक्रीज ही है। पहले कहते थे पंजाब में ज्यादा है, टीवी में आ गया और बाकी सब चीजों में आया, मगर आज सिर्फ पंजाब नहीं, मैं बताऊं गुजरात भी प्रथम स्थान के नजदीक में है और महाराष्ट्र वो भी उसी के समकक्ष में है कि वो भी दूसरा स्थान लेगा। तो ये हम सबकी बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर हम सब अभ्यास करें कि हम ऐसे क्या करें जिसको अन्न के अंदर, क्योंकि जो बाकी अन्न देखा जाता है, अभी बीच में कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आया था कि पहले जो गेहूं में जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए थे और आज 2017 का एक था और उसके पहले का, तो उसमें माइक्रो जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसकी बहुत बड़ी कमी है। पहले जिंक होता था गेहूं के अंदर और बाकी न्यूट्रिएंट्स होते थे, आज वो ना के बराबर है और वो अनाज आज हेल्थ के लिए भी जोखिमीय बन रहे हैं। तो यह खेती बहुत सहज है और उसमें भी अगर किसान शाश्वत यौगिक खेती से मोटे अनाज के ऊपर सोइंग करेगा, क्योंकि योग का प्रयोग जहां प्रकृति भाव और भावना से जुड़कर धरती मां और प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़कर उस बीज को हम चार्ज करके सोइंग करेंगे और उस बीज को सोइंग करने के बाद जैसे एक बच्चा होता है उसको खाली आपके प्यार की जरूरत होती है। आप खेत में भी जो लहलहाता फसल होता है उसे प्यार चाहिए, उसे खाद और दवाई नहीं चाहिए, उसे प्यार चाहिए। इंसान को प्यार चाहिए तो प्रकृति को भी प्यार चाहिए और वो प्यार वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के अलावा और कोई सिखा नहीं सकता और यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। जहां प्रकृतिपति परमात्मा से जुड़कर प्रकृति की सेवा करेंगे, धरती मां की सेवा करना, और यह बहुत कम पानी में होने वाला फसल है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाएगा और आने वाले समय में जो पानी की किल्लत होने वाली है ना, कल आपने सबने लघु नाटिका देखी होगी, जिसमें दीदी ने बताया ना कि हीरो की वीटी भी देंगे तो भी पानी का एक ग्लास नहीं मिले, और वो समय बहुत ही नजदीक है। आज गुजरात में 150 करीबन 900 या 1500 फीट डीप जाकर पानी लाना पड़ता है, फिर भी खारा पानी आता है। यह तो जो भी आगे वालों ने सोचा, बाकी गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो मध्य प्रदेश की बदौलत है, क्योंकि नर्मदा आने के कारण। ऐसे कुछ जगह पर जो नदी कनाल से जो पानी आ रहा है, जिसके कारण जो प्रकृति जीवित है। बाकी गुजरात में भी हर एक तहसील, चाहे मेहसाणा, कलोल या हमारा सौराष्ट्र, जहां पर भी देखो पानी की बहुत किल्लत थी, पीने का भी पानी नहीं मिल रहा था। तो पानी की सबसे ज्यादा बचत करने वाला ये क्रॉप है। मैं आप सभी से विनती करता हूं, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को इसके ऊपर प्रेरित करें। यह अन्न बहुत ही अच्छा है, और इसमें दूसरा किसान को कोई पेस्टिसाइड दवाई के बारे में कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी, अगर उसकी मेथड सही तरीके से वो सोइंग करता है। बीज जो है वो नेचुरल बीज है। ध्यान कुछ ऐसा है कि उसकी कटाई जो करते हैं वो कुछ ऊपरी कटाई करें, जिसके कारण आज मोटे अनाज में लोगों को दिक्कत रहती है, मिट्टी आती है खाने में, है ना, क्योंकि उसको ऊपर से कटाई करें। और आज ऐसा हार्वेस्टिंग आ गया है, ऐसी इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि मोटे अनाज को सहज रूप से उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा अनाज पैदावार कर सकते हैं दीदी। तो मार्केट में इंटरनेशनल या नेशनल सभी जगह इसकी कीमत और ज्यादा होने वाली है, और ये हेल्थ के ऊपर है और सब जागरूक हो गए, इसलिए यह अनाज की कीमत भी मिलेगी। तो आपके लिए ये क्लॉक अलार्म है कि जाग जाइए और इस अनाज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और योग के आधार पर इस खेती को अपनाइए। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश भाई। न केवल शब्द, भावनाएं भी आपकी प्रेषित हो रही थी, और ये दूरदर्शी होकर यदि हम देखें तो इसका भविष्य बहुत सुदृढ़ है किसानों के लिए, निसंदेह। और ये हम फील कर रहे हैं, मोटा अन्न और मिलेट्स, एक वर्ड जैसे मिलेट्स सुने तो लगता है कि कोई बड़ी चीज है और ये बड़े लोगों की भोजन की पद्धति है, ऐसा फील होता है। पर हमने देखा कि लोग बहुत बहुत जागरूक हैं। जागरूक उनका होना मतलब किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़नी ही है। और जहां प्रकृति पति की बात चल रही है और प्रकृति की भी बात चल रही है, ये सत्य है कि मार खाकर भोजन देने की क्षमता यदि किसी में है तो वो माँ में है। मार भी खाती है बच्चे की और उसे भोजन भी प्रदान करती है, चाहे वो प्रकृति हो या जन्म देने वाली माँ हो या वो परम सत्ता हो जिसे हम अपनी माँ कहते हैं। पर कुछ प्रामाणिक उदाहरण चाहिए मानव बुद्धि को। तो मैं फिर से आऊंगी महेंद्र भाई आप पर, कि इसके प्रामाणिक उदाहरण कुछ हमको दें जो हम समझ सकें इस श्री अन्न, मोटे अन्न, सुपर फूड। और जब जिग्नेश भाई कह रहे थे कि देवी देवताएं जब आपस में मिलते थे तो ये अन्न लेके जाते थे, तो मुझे लगा इसे देव अन्न भी कहा जा सकता है। तो ऐसे देव अन्न के हम सब उपभोग करता है, और हम लोगों ने ही अगर ये कहूं कि इसे उगाया है प्रारंभ में, तो ये सिखाने वाले वो परम सत्ता है। तो प्रामाणिक उदाहरण के लिए महेंद्र भाई आपसे अनुरोध, इसके कोई प्रामाणिक उदाहरण हमें बताएं। और मेरे पास एक स्लिप आई है कि गुजरात के कोई भाई हैं, इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगी, पहले मैं महेंद्र भाई से कहूंगी प्रामाणिक उदाहरण हमें बताएं।
अभी अभी जितने भी बातें हमने सुने उसका महत्व तभी है कि अगर वो प्रैक्टिकल में हमारे लिए और किसान के लिए उसका कुछ महत्व हो। तो वैसे तो हम जब किसानों के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं या किसानों के समूह हैं। आज भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो ली है वो समूहों के लिए हैं। चाहे वो किसानों का हो, महिलाओं का हो, हमारे उधर कोई गट कहते हैं, कोई समूह कहते हैं, और अगर उसकी कंपनी बना दी जाए तो उसको एफपीओ कहते हैं। तो ये भली भांति भारत सरकार के जो भी प्लानर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है, और उसी प्लानिंग के तहत ये सारी योजनाओं को पूरे विश्व में लागू करने के लिए तैयारी की है और प्लानिंग्स हुए हैं। अभी हम अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो ऐसे हमारे पास उदाहरण है, महिलाओं का समूह है जो पूर्ण आदिवासी इलाका है, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा है, खेती तो उन्होंने अभी भी मिलेट्स की ही की है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका मूल्य कितना है। वो उगाते हैं और उगा के किसी न किसी व्यापारी एक दो जो होते वो शहर में जाकर दे देते हैं। अब सवाल ये है कि उगाने वाले को उसका महत्व नहीं पता, आज खाने वाले को तो उसका महत्व है, तो वहां से वहां तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसके सिस्टम के थ्रू वो जाता है। लेकिन ये अगर ऐसा ही चला तो हमारे किसान भाई बहनों को उसका लाभ नहीं मिल सकता, इसीलिए ऐसे कुछ समूह के साथ हम जुड़े हैं। तो एक दो समूह हमारे ऐसे हैं जिनके साथ मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूं, तो वो है मध्य प्रदेश का इलाका जो एकदम इंटीरियर है, मतलब हम अगर जाएंगे अगर हिंदी भी बात करेंगे तो वो हिंदी भी नहीं समझ पाते, और कभी कभी अगर मैं रास्ता भटक गया, क्योंकि उस एरिया में तो गूगल भी नहीं है, गूगल मैपिंग भी नहीं है, तो रास्ता पूछने के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी भाषा हम कैसे समझे और वो कैसे समझे। तो वो जो लोग लाते हैं तो वहां से एक कान्हा कृषि उपज संस्था बनाई, जो अफकोर्स भारत सरकार और वहां के स्टेट राज्य ने उसमें अपना सहयोग दिया है। वहां 700 महिलाएं हैं और वो महिलाएं सिर्फ मिलेट्स के ऊपर काम करती है। अब वो क्या काम करती है, पर्टिकुलरली वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके पहले में आपने जो कुछ पिक्चर्स ये जो देखे, ये जो चित्र है, ये ऐसे व्यंजन तो बनते हैं जो आपको वेबसाइट पर अपने YouTube पर हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो पिक्चर है ये एक्चुअल वो पिक्चर है जो उन आदिवासी महिलाओं ने अपने खेत में उगाकर अपनी जगह पर मशीनें लगाकर इस तरह के व्यंजन बनाए हैं। कहीं नमकीन है, कहीं मिठाई है, कुकीज है। अगर वो कुकीज भी हम खाएंगे तो ऐसा लगेगा उसका स्वाद भी अच्छा है, बहुत कुछ है। और पर्टिकुलरली इसके जो स्टिकर्स वगैरह की जो डिजाइन है हमने अपने यहां किए, उसको लेबल लगाए। हमारी जरूरत क्या है कि इस ऐसे समूहों को हम प्रोत्साहन दें, और ये कोविड के पहले से शुरू है। कोविड के प्रवेशता जब हुई तो साल दो साल तो हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन फिर से उन महिलाओं ने इस तरह के प्रोडक्ट्स को तैयार करने की कोशिश भी की और कर भी रहे हैं। अब इसका शहरों में कैसा उपयोग होता है कि आजकल जब हमारे यहां बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमारे एक सिस्टम है, हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं, शादी हो या और भी कोई ये हो, तो वहां उनको ऐसा प्रमोट किया गया कि अगर आपको किसी को देना ही है तो आप ऐसी चीज दीजिए जो उनके स्वास्थ्य को ठीक करे। तो ऐसे चीजों को अच्छे से सजाकर, अच्छे से उसको डेकोरेट करके, ऐसे बॉक्स या बास्केट बनाकर उन जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं उनको तक दिए, और वो जो गांव की जो गांव है, जो मैं कहूंगा वो जिला शायद आपने सुना हो, डिंडोरी और मंडला, तो ऐसे जिलों के जिले में इंटीरियर के महिलाओं ने बनाए हुए ये सारे दिल्ली तक पहुंचे हैं। और ये है हमारे साथ एक उदाहरण, इसको जरूरत है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। तो जरूर उन महिलाओं के लिए हमने एक बार जोर से ताली बजानी चाहिए जिन्होंने इसका धाड़स किया। आज एक क्षेत्र के 700 महिलाओं का अगर समूह है, निश्चित ही 100-200 एक्टिव होंगे, बाकी भले ना हो, लेकिन एक अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि आज भारत में कहीं भी जाए अगर मिलेट्स पे चर्चा होती हो तो कोदो और कुटकी के लिए उस जिले का नाम लिया जाता है। अब जरूरत है उसको हम आगे बढ़ाए। ऐसे संस्थान जो है या गट्स है या फिर समूह है, उनको हम कुछ न कुछ दे, उनका इश्यू क्या था कि प्रोडक्ट तो बना लिए, पैकेजिंग कैसे करेंगे? अगर अच्छी पैकेजिंग नहीं है, अच्छा लेबलिंग नहीं है, क्या आप समझते माल बिकेगा? हाँ या ना? नहीं बिकेगा। माल कितना भी अच्छा, अंदर तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाहर भी अच्छा दिखना चाहिए। तो उनकी समस्या थी कि उनके लिए लेबल्स डिजाइन करना, अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन देना, और पैकिंग के लिए ऐसा ये करे ताकि वो कम खर्चे में अच्छे प्रेजेंटेशन हो सके। तो इस तरह से कुछ काम हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और ये पिछले 4 साल से, इसमें 2 साल तो हमारे इनएक्टिव मोड में चले गए। तो इस तरह से गांव में अभी भी वो प्रतिभा है, हमारी बहनें हैं, भाई है, जो इसमें सहयोग करते हैं। तो ये एक उदाहरण हमने हमारे क्षेत्र में किया हुआ है।
बहुत सुंदर, जब महिलाएं इंटीरियर एरिया में ये कर सकती हैं, तो फिर हम तो बुद्धिजीवी हैं, हमारे लिए तो ये प्रश्नवाचक हो जाता है। महेंद्र भाई, एक चीज मुझे आ रही थी, थोड़ा व्यक्तिगत। हम घर में जब सेंटर पर गए, तो हमारे सेंटर पर एक वृद्ध भाई थे, शुगर पेशेंट थे। तब हमने पहली बार ये कोदो नाम सुना, क्योंकि उनको चावल अलाउ नहीं था, तो ये कुछ चावल की तरह लगता था। तो उन्होंने बोला, मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे ये बना के दो। तो हम उनसे पूछते थे, ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आता था। बोले, ये चावल है और ये मेरे लिए बहुत, यानी मुझे इसकी जरूरत है। तो ऐसा कुछ है कि शुगर पेशेंट कोदो, जिसको हम कह रहे हैं, वो चावल की एब्सेंट में इसका सेवन कर सकते हैं?
जी हाँ। अभी ये कोदो की अगर बात करें, तो काफी लोगों को शायद पता हो, अगर किसको नहीं भी पता हो, तो ये जो हमारा जो चावल होता है ना, उसका बारीक दाना जो टुकड़ा होता है, उसके जैसा एकदम छोटा होता है। और कई बार हमारी फूड हैबिट्स ऐसी है कि अगर मैं चावल खाने वाला हूं तो मुझे चावल ही चाहिए। लेकिन आपको अगर डायबिटीज मधुमेह है, तो डॉक्टर कहता है कि आप चावल तो बिल्कुल नहीं ले सकते। इवन ये मिलेट्स जो है, ये ग्लूटेन फ्री है, ये उसकी विशेषता है। तो ये जो चावल, उसका चावल के जैसा बारीक चावल बनेगा, और वो अपने राइस के बदले में कोदो अगर सेवन करेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि हम चावल खा रहे हैं, लेकिन उसमें शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होने की वजह से ये उसका अच्छा सोर्स है, जो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है।
बहुत शुक्रिया। बीमारी हो उसके बाद सेवन करें, इससे पहले बीमारी न हो इसलिए हम ये सेवन करें, तो ये हमारे लिए लाभप्रद होगा। जिग्नेश भाई कुछ कह रहे हैं।
हाँ, महेंद्र भाई जो बता रहे थे कि ऐसे हम उन लोगों को आगे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हर एक स्टेट में FPO फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खुद फार्मर्स बना सकते हैं, और हर एक स्टेट में ये अवेलेबल है। दूसरा, अभी अभी मैं पढ़ रहा था, जब हमारे पास गुजरात गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी इसके लिए, अगर आप मिलेट्स क्रॉप सोइंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सहाय देती है, उसको बीज लाने के लिए, उसकी जुताई करने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए, उसके लिए सहाय है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट का मुझे मालूम है क्योंकि वहां से हूं, तो 35 लाख रुपए मिलेट्स के ऊपर उसको प्रोड्यूस, माना जैसे भाई साहब ने बताया कि ऐसे पैकेजिंग के लिए किसी को यूनिट ओपन करना है, या उस संस्था को ब्रांड बनाने के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए, या बीज लाने से लेकर सब कुछ 35 लाख रुपए की सब्सिडीज गवर्नमेंट की ओर से मिल रहा है, और उन्होंने 17,000 किसानों को कवर करना है। तो ऐसे हर एक स्टेट में और केंद्र गवर्नमेंट की ओर से भी मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार भी इसीलिए सहाय करती है। तो अगर 11 किसान इकट्ठा होकर वो अपना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाता है, जो किसान है वो, और वो खुद अपना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट भी कर सकते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश भाई। अब जिस कक्ष में हम हैं, और जहां बार बार हम मेडिटेशन की बात, राजयोग की बात कर रहे हैं, तो वेणु भाई, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि मिलेट्स का राजयोग से, या राजयोग का मिलेट से क्या संबंध हो सकता है या होता है, तो इसके क्या बेनिफिट हैं, थोड़ा सा इसे समझाएंगे।
मिलेट्स का राजयोग से संबंध, यहां अभी मिलेट्स शब्द को मैं थोड़ा भोजन शब्द बोलूंगा, क्योंकि जो भी मिलेट्स बोल रहे हैं हम भोजन के लिए ही बात कर रहे हैं, बात ये रही। दूसरा टॉपिक हमारा है स्वस्थ खेती, लेकिन आप सब फेल कर रहे हैं कि ये जो चर्चा हो रही है हमारे स्वस्थ मानव समाज के लिए हो रही है, बराबर। और हम स्वस्थता का अर्थ, स्वस्थ होने का अर्थ यही समझते हैं कि कोई बीमारी हमें न हो, बराबर, एग्री। अब बीमारी न हो तो कई लोगों को मैंने सुना है कि मुझे आज तक बीमारी नहीं हुई है, लेकिन होता यह है कि बीमारी अंदर डेवलप हो रही है, वो डिस्प्ले नहीं हुई है, बराबर। और कई बार अचानक कैंसर आ गया तो कहीं कहते हैं ना कि उसको कुछ नहीं था, अचानक कैंसर डिटेक्ट हो गया। एक्चुअल में अचानक होता नहीं है, अंदर वो डिस्प्ले अचानक हुआ, बाकी डेवलप तो अंदर मिलेट्स जो भोजन की चर्चा कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि इसको इमीडिएट अपनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर कहें तो हम उस रीति से कर सकते हैं कि गेहूं और चावल ये दोनों को कम करते जाएं, हफ्ते में एक बार लें, बाकी के दिन बाजरा ज्वार और उसका मैक्सिमम यूज करें, और धीरे धीरे जो ये मिलेट्स जो हैं, बाजरा ज्वार तो लगभग अवेलेबल होता है, उसका मैक्सिमम यूज शुरू करें। हाँ, लेकिन उसके लिए सही परिणाम लेने के लिए और भी कुछ ध्यान देना होगा, और उसमें कई सारी बातें होती हैं, वो बाद की हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं जो मैंने अडॉप्ट किया है। घानी का तेल, अब डबल फिल्टर करके हम जो कहते हैं वो भी नुकसानकारक हो रहा है, तो घानी का तेल वो होना चाहिए। और शुगर, मैंडा, जो भी ये वाइट है ना, वो बंद करें या तो कम कर दें, और मिलेट्स यूज करें तो इसका इफेक्ट, जल्दी रिजल्ट हमें मिलने लगता है। रही बात राजयोग की, वो चाहे मिलेट्स का भोजन हो या गेहूं चावल का भोजन हो, देखो यहां भी हम गेहूं चावल का भोजन अभी तो ले रहे हैं, मिलेट्स का थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी भोजन हमें प्रिय लगता है, वो न सिर्फ हमारे शरीर को प्रभावित करता है, मन को भी प्रभावित करता है। तो हेल्दी बॉडी के लिए जो भोजन की चर्चा हो रही उसकी तो हम सबको पता है, और वर्तमान समय समाज में दो समस्याएं हैं और दो स्थान ऐसे हैं जहां भीड़ ज्यादा है, एक है हॉस्पिटल और दूसरी जगह है कोर्ट कचेरी है। तो हमें डायरेक्ट तो पता चलता है कि हॉस्पिटल में जो भीड़ है वो भोजन की समस्या के कारण है, या तो ज्यादा भोजन से है, मोस्टली ज्यादा भोजन से ही है, भोजन की यथार्थ विधि न होने के कारण, भोजन का जो क्वालिटी है उसके कारण, ये सब कारण है, उसके कारण हेल्थ बिगड़ता है। विषयुक्त भोजन है, बराबर, जो खेडूत बोएगा, इसके कारण हॉस्पिटल भरपूर है वो तो पता है, लेकिन क्या आपको ये महसूस हो रहा है जो हमने महसूस किया, ग्राम विकास विंग ने महसूस किया कि कोर्ट कचेरी में जो केसेस के भीड़ लगी है, ढेर हो गए हैं, उसका भी कारण, वन ऑफ द रीजन भोजन है। जो हमने बताया कि भोजन सात्विकता हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी मिस हुई, इस कारण कोर्ट कचेरी। तो तन अस्वस्थ होता है तो हॉस्पिटल है, लेकिन मन अगर स्वस्थ नहीं है तो कोर्ट कचेरी भरपूर है, ठीक है। अब मन को भी स्वस्थ बनाना है, मिलेट्स हमारे तन को करेगा, लेकिन जो बनाते हैं, इसलिए कहते हैं कि बनाने वाला राजयोगी हो तो कोर्ट कचेरी को भी हम जीरो तक ले जा सकते हैं। ये दोनों राजयोग का संबंध है कि किसान तो अपने रीति से यौगिक खेती करेगा, और ये वो यौगिक खेती का अन्न हमारे घर में आएगा भी, लेकिन बनाने वाला टीवी देखकर बना रहे हैं, ऐसे हिंसक बातें, ऐसी कुछ बातें, विकारों से वश जो प्रसंग है, ऐसी मनोवृत्तियों से अगर बना रहे हैं, तो जो भोजन खाएगा उसमें वही वृत्तियां प्रभावित होगी, जागृत होगी, और इसी की वजह है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम विकार। आप देखेंगे कोर्ट कचहरी के केस या तो बलात्कार के होंगे, काम विकार के होंगे, क्रोध के होंगे, ईर्ष्या द्वेष के होंगे, मनमुटाव के होंगे, जो डाइवोर्स के केसेस, इस सब बातों में अगर भोजन पवित्र होगा, पवित्र भोजन का अर्थ ये है कि बनाने वाले, खाने वाले, पकाने वाले सब परमात्मा पिता की याद में रहे। लास्ट बात मैं जोर देता हूं, जो तीन क्वालिटी बताई थी, यह रहा राजयोग में परमात्मा का परिचय आपने आज पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है। तो कहते हैं कि वो शांति का सागर है ना, वो हमारा पिता है। हमारा पिता क्या है? शांति का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर है, पवित्रता का सागर है। हम कहते हैं जब पवित्रता के सागर को हम याद करते हुए भोजन बनाते हैं तो वो भोजन सात्विक बनता है। पवित्रता का सात्विकता से संबंध है। हम परमात्मा को सर्वशक्तिमान समझकर याद करके उसके साथ संबंध जोड़कर भोजन बनाते हैं तो वो भोजन पौष्टिक बनता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता की याद से बना है। और हां, हमारा पिता परमात्मा आनंद का भी सागर है, और वो आनंद के सागर की स्मृति में अगर हमने भोजन बनाया, आनंदित होकर, खुशी होकर, भोजन खाकर खुश नहीं होना है, भोजन बनाते समय भी खुशी, वो आनंद सागर की स्मृति में बनाया हुआ भोजन स्वादिष्ट होगा, क्योंकि स्वाद से हमें आनंद प्राप्त होता है। तो पवित्रता का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर, ये तीनों बातें भोजन में फुलफिल होगी। ये है राजयोग का कनेक्शन।
बहुत बहुत धन्यवाद। बात आखिर आ गई बीज पर, राजयोग, मेडिटेशन। जब तक मन में वो प्रकंपन नहीं है तो बाहर से हम जो भी अन्न अंदर प्रेषित करेंगे वो एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाएगी। मैंने बहुत सुंदर पढ़ा कि बहुत या सब कहूं, सब टच में व्यस्त हैं पर कोई किसी के टच में नहीं है। वर्तमान स्थिति कुछ इस तरह की हो गई है। तो अभी स्वयं के टच में आना, इट मीन्स मेडिटेशन। स्वयं के समीप जाना, इट मीन्स मेडिटेशन। तो पहले मन का भोजन, मिलेट्स के रूप में मन का भोजन जो आपको रोज यहां मिल रहा है, पॉजिटिव थॉट्स, परमात्मा महावाक्य, ये सत्य है। यदि आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, तेज चलना है अकेले चलिए, दूर तक चलना है तो साथ में चलिए। इसीलिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम सबको साथ में चलना है। साइंस को भी लेना है पर साइलेंस से अलग होकर नहीं, क्योंकि साइंस देन ही साइलेंस की है। तो पूनम बहन से पुनः अनुरोध, साइंस किस तरह से वो इफेक्ट हमारी बॉडी में, हमारे धन में, हमारे मन में, किस तरह ये अन्न अपना प्रभाव छोड़ता है, और मेडिटेशन का इसमें क्या यूज है।
सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी हम सुपर फूड की बात कर रहे थे, उसको देव अन्न भी बोला, और मेरे मन में अभी ख्याल आया कि हम इसको मिरेकल फूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जादू की पुड़िया है, इसके अंदर सब कुछ है। सुपर फूड इसलिए इसको कहेंगे हम कि इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। इसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, जिंक है, मैग्नीशियम है। जैसे जिग्नेश भाई अभी बोल रहे थे कि वीट के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है, तो इसमें जिंक ऑलरेडी प्रेजेंट है बहुत भरपूर मात्रा के अंदर, और इसी वजह से इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक भी कहते हैं। तो कोरोना काल के बाद इसको हमने इसको सुपर फूड माना है, और यही एक मेजर कारण है। और इसके साथ साथ इसके इस अन्न के अंदर कैरोटीन है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है। तो अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि कैंसर बहुत इसके साथ बढ़ रहा है, तो इसके साथ हम रोक सकते हैं। तो विटामिन B3 एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि वो मेटाबॉलिज्म को की जो प्रक्रिया है उसको तेज करता है, और जिसके कारण कैंसर नहीं होता। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे कि अभी हम बोल रहे थे कि मधुमेह की बीमारी, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, इन सबको रोकता है जो ये मोटा अनाज है या श्री अन्न है। तो उसमें भी एक मेजर कारण ये है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो 1.5 ग्राम पर 100 सर्विंग है, और वहीं पे अगर हम वो वीट लेते हैं तो वो 60 ग्राम है पर 100 सर्विंग, और राइस की वो 50 ग्राम है, जबकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज चाहिए वो सिर्फ 5 ग्राम चाहिए। तो जब हम रोज रोज ये वीट और राइस खाते हैं तो एक तरह से ये ग्लूकोज का फ्लड आ जाता है। अब स्थूल का फ्लड सोचो कैसे आता है, तो सब कुछ बहता है उसके अंदर, तो हमारे लिवर के ऊपर ये एक फ्लड आता है ग्लूकोज का, तो वो संभाल नहीं पाता उस फ्लड, उस जो शुगर है, ग्लूकोज है, तो वो शुगर जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और वहां पे जो ब्लड वेसल्स का क्या काम है, वो ब्लड को लेके चलता है जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सभी ऑर्गन्स को होती है ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके। पर जब उसके ऊपर इतना बड़ा हैवी लोड आ गया, वो इतना भारी हो जाता है कि वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता, इसी जगह इसी कारण वो जो ग्लूकोज है वो जगह जगह जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण ये सब बीमारियों का कारण बनता है। और इसके बनिस्पत अगर हम तुलना करें जहां पे हम ये मोटे अनाज को यूज करें जिसकी शुगर लेवल सिर्फ 1.5 ग्राम है पर 100 सर्विंग, तो वो बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, तो शुगर की जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ती नहीं है, वो मेंटेन रहती है। इसीलिए अभी दीदी बोल रहे थे ना कि वो भाई साहब जो वहां थे उनको चावल देने थे, तो उसका कारण यही था कि वो जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं या हम नॉर्मल इंसान हैं, इनके अंदर भी जो ब्लड की जो शुगर की लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, और जो हार्ट अटैक है उसको भी कम करता है, क्योंकि ये हृदय की जो मांसपेशियां हैं मोटा अनाज उनको स्ट्रांग करता है, उनको मजबूत करता है, जिसके कारण जो ब्लड की सप्लाई है वो निरंतर हार्ट को होती रहती है, तो हार्ट अटैक्स भी जो है वो कम होते हैं। और ये एक बाइल सिक्रीशंस होती हैं जो रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको कम करता है, उससे क्या होता है कि जो ये स्टोन्स बनते हैं हमारे गाल्स के अंदर उनको भी ये अनाज रोकता है, तो इसीलिए ये एक जादू का फूड ही हो गया। तो इसको हम मिरेकल फूड, देव अन्न बहुत कुछ बोल सकते हैं, और मोटापे की बात हमने पहले ही करी थी, और इनसोमिनिया या डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, तो ये ट्रिप्टोफैन बहुत होता है मोटे अनाज के अंदर, तो अगर रात को थोड़ा, जो जिनको इंसोमनिया है, नींद ना आने की बीमारी है, तो वो रात को अगर थोड़ा सा दलिया इसका लेते हैं तो ट्रिप्टोफैन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन केमिकल को बढ़ाता है, ये एक हैप्पी केमिकल है जिससे जो हमारी नींद को बढ़ाता है, जिससे अच्छी नींद आती है। तो मतलब हम क्या ना बोलें, इस फूड के अंदर सब कुछ है, तो इसीलिए इस फूड को जरूर हमें यूज करना चाहिए, पर थोड़ी कॉशन के साथ। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है ICMR का, उसके अकॉर्डिंग है कि हमें अगर हम डेली 300 ग्राम सीरियल्स लेते हैं सारे वीट राइस को मिला के, तो उसमें हम 1/3 पार्ट जो है ना वो इसका ऐड कर दें मोटे अनाज का, और वो भी हम 3 से 4 दिन हफ्ते के अंदर लें, डेली नहीं लेना, और बाकी जैसे भाई साहब ने बोला है अपनी व्यक्तिगत रूप से कि अपनी बॉडी के अनुसार लें, तो ये एक कॉशन है इसके अंदर। और दूसरा है कि इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हैं, वो दालों में भी होते हैं, ऐसे डरने वाली बात नहीं है, तो हम भिगोते हैं ना उनको सारी रात, तो इसको भी भिगोना है, ये एक मस्ट है काम, इसके लिए अति जरूरी है, इसको रात में भिगोएं, और वो पानी पहले अच्छे से धो लें, जैसे मिट्टी का आ रहा था ना पॉइंट की वो मिट्टी आ जाती है, तो अच्छे से धो के उसमें उतना ही पानी डालें जितना हमें चाहिए, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। और एक फाइटिक एसिड रहता है, ऐसे मतलब बहुत सारे साइंटिफिक इसमें प्रमाण है, तो वो भी हमारे कई न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अब्सॉर्प्शन में नहीं आने देता। और एक और बड़ी बात, एसिडिटी आज सबको ही रहती है, तो ये मैं मतलब वन बाई वन मुझे याद आ रहा है, तो वो एल्केलाइन फूड है ये, तो एसिड को नहीं बनने देता, और इससे हमारी डाइजेस्टिबिलिटी भी जो है वो इनहांस होती है। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये एक मिरेकल फूड को हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करूंगी दीदी, जिग्नेश भाई ने बोला था कि हमें खादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं बायोफर्टिलाइजर्स के साथ डील करती हूँ, तो मुझे एक वो पॉइंट याद आ गया कि ये वैम होता है इनकी जड़ों के अंदर, एक दो दिन पहले शायद प्रियंका बहन ने भी उसका जिक्र किया था, वेस्कुलर और वेस्कुलर माइक्रोराइजा, वो फंगस होती है, फफूंदी होती है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रकार की फंगस है। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो सोल्युबलाइज करते हैं चीजों को, ये मोबिलाइज करता है। यहां पे कोई चीज पड़ी है, कोई खनिज पड़ा है, तो वहां से वो ला के देता है। वो क्यों लाता है? ये धागे की तरह होते हैं, रेशे की तरह होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, और ये नीचे तक जमीन के अंदर चले जाते हैं, और वहां से जाके इवन पानी की भी अगर कमी है ना, तो वो पानी भी पौधे को लाके देता है। तो ये एक कारण है जो आप बोल रहे हो कि इसके अंदर मतलब किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। तो ये हर प्रकार से हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारी जमीन को भी स्वस्थ बनाता है। तो हमें बीइंग साइंसदान और आप सब जो भी इसके साथ जुड़े हैं, किसान भाई हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इस बात को जरूर आगे लेके जाएं और इसको प्रमोट करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया पूनम बहन। मैं समझती हूँ इतना महत्व यदि सुनकर हम प्रारंभ न करेंगे तो बात लगेगी अधूरी समझ में आई। कुल मिला के हर प्रकार के रोगों का इलाज, अच्छी नींद अगर है तो फिर आपका मेडिटेशन भी अपने आप अच्छा होने लगता है। बहुत नींद नहीं, अच्छी नींद, जैसा कि वर्ड यूज किया, अच्छी नींद। तो नींद आए क्योंकि भोजन और शरीर एक दूसरे के पूरक है। यदि भोजन अच्छा है, शरीर ठीक है, तो आपका मेडिटेशन भी अच्छा होता है। या ये बोल दें, मेडिटेशन अच्छा है तो वो आपके शरीर को भी अच्छा करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक चीज और मैं पूनम बहन आपसे डिस्कस करूंगी। हमारे सेंटर पर समर कैंप हम करते थे कुमारियों का। वहां पहले 7-8 साल पहले हमारी एक लेडी डॉक्टर हैं, वो आती थी और वो बार बार कहती थी गेहूं की रोटी खाओ। हम ऐसे काउंसलिंग रखते थे बच्चियों की, तो वो खास आकर बच्चियों को कहती थी कि गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी। लेकिन लास्ट ईयर जब हम लोगों ने उनको बुलाया तो उन्होंने बोला गेहूं की रोटी मत खाना। तो ये जो चेंज हुआ, तो मैंने ही दीदी को बोला, रश्मि नाम है उनका, लेडी डॉक्टर है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कि दीदी आप हर बार कहते थे कि गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी। तब पहली बार उनके मुख से मैंने ये मिलेट्स वर्ड सुना और उन्होंने खास बोला, पहले जो ये कहते थे गेहूं की रोटी, दो रोटी खा के दूध पी के फिर सोना, तो उन्होंने बोला नहीं, गेहूं की रोटी अवॉइड करो। आप ये मान के चलिए, कल तक जो परंपरा से चला आ रहा था, एक बैग से एक नई चीज आएगी और वो आपके पूरे जीवन को बदल देगी। वो लगेगी नई पर है वो पुरातन, सनातन, जो हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब, बात वही आ रही है, नए पैकेट्स में पुराने अनाज। तो ये क्या हुआ जो गेहूं को भी चेंज कर दिया गया?
दीदी, इंटेंसिव क्रॉपिंग की वजह से हमारी गेहूं के अंदर भी बहुत सारे खनिज पदार्थों की कमी आ गई है, जैसे अभी, और हम भूल चुके थे इन अनाजों पे। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में रहती हूँ, तो जब मैंने 89 में ज्वाइन किया था, उस टाइम सॉर्गम पे हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट होता था ब्रीडिंग के अंदर, और 4-5 साइंटिस्ट होते थे। तो देखते देखते वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया, कोई नहीं रहा उसके अंदर, और एक बड़ा वो छोटा सा प्रोजेक्ट रह गया। और यूनिवर्सिटी या मतलब हमें सेंटर से भी उसकी कोई इतनी फंडिंग नहीं रही। पर अब पिछले कोई 2 सालों में मैं देख रही हूँ कि उसमें दोबारा से फंडिंग शुरू हो गई और एक बार फिर से लगने लगा कि हमें उसी ट्रेडिशनल चीज पे जाना है। भले हम कितने मॉडर्न हो जाएं, कितनी अच्छी वैरायटीज निकाल ली हैं, सब कुछ कर लिया है, पर फिर भी आज हम दोबारा उसी पे आए हैं, क्योंकि हमारी जमीन की सेहत भी खराब हो गई और हमारी अपनी सेहत भी खराब हो गई। तो हम मोटे अनाज को पहले ये सोचते थे कि ये गरीब का अनाज है। अभी मुझे हल्का याद आ रहा है कि बचपन में फादर बोला करते थे कि गेहूं की रोटी हमें घर में तब मिलती थी जब कोई मेहमान आता था, मोटा अनाज ही मिलता था। वो बड़ा ऐसे ही वो शुगर के लिए बोलते थे कि घर में हमें शक्कर और गुड़ मिलता था, और कोई मेहमान आता तो चीनी मिलती थी और चीनी को ताला लगा के रखते थे। तो आज हम वो गुड़ को भी दोबारा से ला रहे हैं, चीनी खा नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो वो हम अपनी ट्रेडिशनल चीजें भूल चुके थे इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो दोबारा हमें फिर से जुड़ना पड़ेगा, फिर ही हमारा जो कल हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं सर्वांगीण विकास का भारत का, तभी हमारा पूर्णता विकास होगा और तभी हम स्वर्णिम भारत बना सकेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो स्लिप आई है गुजरात के किसान एक आए हैं जी, किशोर भाई आए हैं, वो सैंपल लाए हैं मोटे अनाज का। भाई साहब का करतल ध्वनि से अभिनंदन और स्वागत। महेंद्र भाई, आपसे अनुरोध है कुछ बताएं कि मोटे अनाज का हमारे मेडिटेशन से क्या रिलेशन है।
मेडिटेशन का रिलेशन तो हर घड़ी हर पल, ये हमारी लाइफस्टाइल ही है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, उससे समझ में आएगा। मैं पढ़ाई करके जस्ट मुंबई में गया, नौकरी करने लगा, फिर मैं जस्ट बिजनेस की शुरुआत की, तो हमारे बड़े सीनियर एक ऑफिसर थे जी, तो हमारे जो सीनियर व्यक्ति थे तो वो मेरे को पूछे, अरे महेंद्र तुम ये सुबह सुबह किधर जाते हो? तो मैंने बोला मैं मेडिटेशन करने जाता हूं। तो तेरे को मेडिटेशन करने की अभी से जरूरत पड़ गई? बोले मतलब वो कहना था कि मेडिटेशन की जरूरत 50-60 साल उम्र हो जाए, कुछ समस्या आए तो, मैंने बोला मैं इसलिए जाता हूं कि बाद में मुझे जाने की जरूरत ना पड़े। सो मेडिटेशन तो ये हमारी लाइफस्टाइल है, हमारे जीवन का अंग है, और वो सिर्फ हमारे अच्छे विचार, अच्छे भावनाएं, प्रकृति से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। तो जब हम इस विधि को अपनाएंगे मेडिटेशन को मोटे अनाज में, तो जो हम दो दिन से सुन रहे थे कि हमारे शाश्वत योगी खेती के माध्यम से कैसे प्रकृति का सहयोग हम लेते हैं और शुद्ध अन्न की निर्मिति करते हैं, तो निश्चित ही ये जो मोटे अनाज है ये दवा का काम करेंगे। आज सिर्फ हम उसको पौष्टिक कहते हैं लेकिन ये दवा का काम करेंगे, और इसमें जब हम अध्यात्म या मेडिटेशन को जोड़ते हैं तो हमारी दुआएं भी उसके साथ जाती हैं। और ये प्रैक्टिकल है, प्रकृति हमें साथ देती है। कभी कभी हम जब खेती करते हैं तो आपको सबको पता है कि ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें निर्मिति होती है, प्रोडक्शन होता है। दूसरे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन फिक्स है, आपने रॉ मटेरियल इतना डाला तो आपका फिनिश प्रोडक्ट इतना निकलेगा, 2-4-5% प्रोडक्शन लॉस हो सकता है, लेकिन खेती का ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता, न किसान कह सकता है, न वैज्ञानिक कह सकता है कि आज इतना एकड़ में इतनी फसल लगाई तो आपको इतना प्रोडक्शन मिलेगा। ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। और हमें जब हम ये क्लाइमेट चेंज की अभी भी हमने बात की, इसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो उसका उदाहरण मैं बताऊंगा कि जब मैं एक बार खेत में, मतलब रोज ही जाते हैं, और बहुत बड़े एरिया में हमने पपीता लगाई थी। पपीता लगाने के बाद में उसकी सेवा भी तो करना है, हर फसल लगाते तो उसको तो सेवा तो करना ही है। बहुत अच्छे फल लाए, और दोपहर में मैं गया, और वापिस जब मैं दोपहर के बाद घर वापिस आया तो मुझे ऐसा लगा कि अब बाल ज्यादा बढ़ गए, तो मैं कटिंग सलून में चला गया, और उतने समय में बहुत जोर का तूफान आया। तो जो नाई है वो अपना काम कर रहे थे, उतने में मुझे फोन आया कि सर यहां बहुत जोर से तूफान आ रहा है, और हवा भी चल रही है, पानी का भी यह है, और शायद ओले भी गिर सकते हैं। तो मैंने जो फार्म पे जो लोग होते हैं उनको कहा कि पेड़ वेड़ के पीछे नीचे ना रहे, वो अपने सुरक्षित स्थान पे जहां पक्का जगह है वहां चला जाए। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूं इस समय पे, अगर ऐसी स्थिति हो, क्या किसी के पास उसको प्रोटेक्ट करने की हिम्मत है या कोई व्यवस्था है? किसी के पास नहीं है। तो मैंने उन जो बाल कटिंग कर रहे थे वो नाई से कहा, भाई साहब आप किस भगवान को याद करते हो? तो उन्होंने कहा, सर मैं ना हनुमान जी को याद मानता हूं। तो मैंने कहा, दो मिनट के लिए आप ऐसा कीजिए, आप हनुमान जी को याद कीजिए। सो ही वॉज सरप्राइज कि उनको क्या हो गया, इधर बाल कटाना है, मुझे बोलते बाल कटाना छोड़ दीजिए। तो वो भी बात सुन लिए और दो मिनट रुके रहे। मैंने उसी समय प्रकृति का आह्वान किया कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो वो कार्य कर रहा हूं कि हम सब समझते हैं कि यहां आए हुए सारे जो मनुष्य है वो परमात्मा की रचना है। मैंने कहा आपने उनको ऊपर से नीचे भेजा, अब उनके भोजन की व्यवस्था मैं कर रहा हूं, क्या इतने सारे पपीता मैं अकेला खा रहा हूं? मैं वो करते समय यह भी ध्यान रख रहा हूं कि कहीं प्रदूषण ना हो, प्रकृति को नुकसान ना हो, तो मैं उस पद्धति से कर रहा हूं। अगर इसमें कुछ हुआ या इसका नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं, उसको आप जिम्मेदार रहोगे। आप विश्वास नहीं करोगे, वो हमारे जो सुपरवाइजर है उन्होंने फोटो निकाले थे कि सर इतने बड़े बड़े ओले गिरे, अगर वो एक मिनट भी उतने ओले गिरते तो सारे बगीचे में पूरे फल भी गिर जाते, पेड़ भी टूट जाते। एक भी पेड़ को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो वैसे के वैसे रुक गया। ये मेरा अपना अनुभव है और ये हर खेती में। अब कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है, उसकी मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं, ये मेरा अपना अनुभव है। तो प्रकृति ने मुझे साथ दिया। तो ये राजयोग जो है, चाहे कोई भी हम कार्य करें, मनुष्य के साथ, प्राणियों के साथ, जमीन के साथ। अभी हम जब बात कर रहे थे कि इसमें खेती में कैसे बदलाव आता है, तो खेती में बदलाव तो हमको सबको पता है कि जो दिखता है उससे ज्यादा जो नहीं दिखता है उसका प्रभाव होता है। हमारे खेती में पर ग्राम हमारी जो सॉइल है वो जिंदी है या मृत है उसके सूक्ष्म जीवाणुओं के संख्या से ये किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो जब हम इस तरह का काम करते हैं तो वो लाखों की संख्या में जो जीवाणु है हमारे लिए 24 घंटा काम करते हैं, जिसका हम एक भी रुपया या वो एक भी मजूरी हम नहीं देते। क्या उनके लिए हमने नहीं सोचना चाहिए? तो जब ये हमारी ऐसी भावनाएं आती है तो इस तरह के अनाज हमारे लिए योग के माध्यम से एक वरदान साबित होते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं मोटे अनाज की, तो इनका सिस्टम ही ऐसा है कि वो सॉइल के फर्टिलिटी को किसी न किसी माध्यम से बढ़ाते हैं।
बहुत शुक्रिया है महेंद्र भाई। यानी भोजन दवा का काम करे और मेडिटेशन दुआ का काम करे। डॉक्टर भी हार जाते हैं तो क्या कहते हैं, अब इनको दवा की नहीं, कहिए आप सब भी कहिए, अब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो सबसे पहली ब्लेसिंग स्वयं स्वयं को। अगर हम भोजन को दवा के रूप में खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा दवाओं को भोजन के रूप में खाना पड़ेगा। इसका ध्यान हमें संयम सिखाता है, मेडिटेशन सिखाता है। तो अनाज के ये प्रकार आपके बीच आए हैं। भाई साहब कह रहे हैं मैं गुजराती ही बोल पाता हूँ, इसीलिए आप भी बताएं, पर आप सामने जरूर आए। भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अपना परिचय दीजिए।
हूँ गुजराती हूँ, जामनगर जिला, गाम सुमरी दुतारपुर। हूँ 7 चौपड़ी भणेलो छु, प्योर खेती करूँ छु। 2007 थी प्राकृतिक गाय आधारित खेती करूँ छु। केमिकल मैं 2007 थी खाधु नथी। ब्रेड मारा घर में, ब्रेड 2007 थी मैं राधी नथी, तेम बारनू 90% मैं खाधु नथी। अमे जामनगर थी निकला एटले एक बे तक गया रातनो, ती पछी सवारनो, तोय मैं 2% सुधी मैं खाधु नथी। मने काई थियो ज नथी, पण आपणे ए जीरवी सकता नथी एटले बजारनू खावामां वधारे करीए छीए। ओम शांति। हवे मूळ टॉपिक ऊपर आवीए के मैं आ 7 धान वाववानो मने विचार क्यांथी आव्यो, ज्यारे 15 ऑगस्टे નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જયારે કીધું કે મોટા ધાન હલકા ધાનનું વર્ષ આવશે ત્યારે મને આ 25 બીજ 1 કિલો પરત આપવાની શરતે 25 બીજ મળ્યું। કોણ લીએ, કયો ખેડૂત લીએ? 1 કિલો પરત આપવાનું 25 અમે આપીએ, તો એ બીજ મેં વાવ્યા, આ બધા જ બીજ મેં વાવી અને મારા ખેતરમાં સુમરી દુતારપુર ગામમાં મેં આ બધા જ મેં પકાવેલા છે। એનું વેલ્યુ એડિશન, ભાઈ એમ કહેતા હતા ને કે આનો ભાવ ન મળે, અમે પાપડ બનાવીએ છીએ, ન સમજાય તો ભાઈને પછી પૂછજો, હું તો ગુજરાતી છું એટલે મને તો હિન્દી નહીં થઈ શકે।
ધીરે ધીરે બોલો। યે ઇન્હોને શરૂઆત મેં જબ નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી કા જબ હુઆ ઓર ઉસ સમય ઉન્હોને બીજ મંગવાયા ઓર ઉસ બીજ કે સામને ઉનકો સામને બીજ દેને થે। और अभी वो ऐसे करीबन ये 13 प्रोडक्ट है और इसके पापड़ भी बनाते हैं।
रागीना पापड़ हमें 200 पैकिंग, 200 पैकिंग में हमें आपीए छे, 100 रुपया लिए छे।
200 पैकेज का पापड़ का 100 रुपया, 100 रुपीज लेते हैं 200 पैकेज का रागी का।
500 रुपया नो किलो,
500 रुपये केजी पैक हुआ।
ત્યારબાદ અમે જે વસ્તુ બનાવી છે એમના નાના મોટા પેકિંગ, બાજરો અમે 100 રૂપિયા કિલો પર કેજી, 100 રૂપિયા પર કેજી અમે વેચીએ છીએ, અને જુવાર 90 રૂપિયા
બાજરા જો કેસે વો 100 રૂપિયા 100 રૂપિયા કેજી મેં એ લોક બેચતે હૈ ઓર સારા પ્રોડક્શન બિક જાતા હૈ।
એક મિનિટ બધું કહીશ। પછી હું 15 વીઘા જમીન હૈ ઇસમે 35 વસ્તુ જીવન જરૂરી 35 વસ્તુ હું વાવું છું.
15 વીઘા જમીન મેં 35 પ્રોડક્ટ લે રહે અલગ અલગ 35 ક્રોપ હૈ ઉનકે પાસ.
એનું કારણ શું આના જેવા અધિકારીઓ સાહેબો મને મળ્યા એને હું ઘઉં લઈને ગયેલો. મારે 100 મણ ઘઉં થયા તો 100 મણ ઘઉં કોણ લીએ?
100 મંથ જો હૈ વો ગેહું થા તો એસે અધિકારીઓ કે સાથ સંપર્ક મેં રહે ઓર એસે ગેહું કોણ લેતા હૈ તો ઉન્હોને ઉન અધિકારીઓ કે સાથ મને વો સોઈંગ કર રહે ઓર ઉન્હી કે સાથ સંપર્ક મેં રહેકર ઉનકા માર્કેટિંગ ભી કિયા.
અમારે એને એમ કીધું કે મારે બધી જ વસ્તુ જોઈ, જો તમે ઘઉં એક જ આપશો તો પછી મારે બાજરો જોઈએ છે, જુવાર જોઈએ છે, મગફળી જોઈએ છે, મગફળીનું તેલ જોઈએ છે, તો બધું મારે ક્યાંથી લેવા જવું?
અધિકારીને બોલા કે એક પ્રોડક્ટ નહીં, આપ મુજે ઓર ભી પ્રોડક્ટ દો, ક્યોંકિ હર કોઈ જબ શરૂઆત કરતા હૈ કે ભાઈ મુજે ઓર્ગેનિક ફૂડ ખાના હૈ તો સારી પ્રોડક્ટ ચાહીએ, શોપ મેં જાતે તો હર પ્રોડક્ટ ચાહીએ, તો હર પ્રોડક્ટ કે બારે મેં ધીરે ધીરે પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કિયા. ઉન્હોને
હું પ્રોડક્શન બનાતા હું ઓર દાલ ભી બનાતા હું ઓર લોટ ભી બનાતા હું ઓર સબ મેરે ફાર્મ પે ઓર્ડર હો જાતા હૈ, બુક હો જાતા હૈ ઓર સબ ફાર્મ પે જ મેં ડિલિવરી કરતા હું.
પૂરા જીતના ભી પ્રોડક્શન કરતે બહાર કહીં જાના નહીં પડતા, ઉનકે ફાર્મ સે હી પૂરા સેલ આઉટ હો જાતા હૈ, તો ઉનકો કિસી ઓર કે પાસ જાના ભી નહીં પડતા, અપને હી ઘર પે મના સારા ઉનકે ફાર્મ સે હી પૂરા માર્કેટ મેં ચલા જાતા હૈ. ઇનકે લીએ બહોત જોરદાર તાલી બજાએ ઓર ઇનકે અંદર જો ઉમંગ ઉત્સાહ હૈ, મેં ચાહતા હું ઓર કિસાનો કે અંદર ભી એસે હી, ક્યોંકિ બહોત સારે એસે કિસાન હૈ જો એક એકડ મેં યા દો એકડ મેં બહોત સારે ક્રોપ લે રહે. મેરે ખ્યાલ સે મધ્યપ્રદેશ મેં જો ક્યા નામ ઇનકા
ઓર સામા હૈ કાંગ હૈ ઓર હરિકંગની હૈ, સબકી મેં ખીચડી લકડે ઓલા લકડે ઓર ઠીકરે કા પાટિયા ઉપર બનાતા હું ઓર મેં ભી ખાતા હું ઓર 50 ગ્રામ 100 ગ્રામ 100 રૂપિયા કા 50 ગ્રામ સભી સાફ કરકે મેં બેચતા હું, તો સાફ કરકે 100 રૂપિયા કા 50 ગ્રામ લેતા હૈ તો મેં ક્યુ નહીં ખાઉં? મેરે પાસ સે
યે બહોત અચ્છા પ્રોડક્શન લે રહે ઓર ઇનકે લીએ જોરદાર તાલી. ધન્યવાદ ભાઈજી,
બહોત બહોત શુક્રિયા. યે તો યે હો ગયા હાથ કંગન કો આરસી ક્યા ઓર પઢે લિખે કો ફારસી ક્યા, સામને હી પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ હૈ.
લાસ્ટ મેં બોલા કે યે જો ભી હમ ઘર મેં પકાતે હૈ વો મિટ્ટી કે બર્તન મેં પકાતે હૈ ઓર લકડી જલા કર કરતે હૈ, મનસ વહાં ઈંધન કે રૂપ મેં ભી વો પ્રાકૃતિક કર રહે હૈ, ગેસ ઓર વો નહીં હૈ. બહોત અચ્છા.
અભી હમ સબ પુનઃ 3 મિનિટ પરમાત્મા કી યાદ મેં બેઠેંગે અગલે સત્ર કે લીએ તૈયાર માનસિક ઓર આત્મિક રૂપ સે.